वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदं
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
देवकी परमानंदं
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
मजोपिसन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोपिसन्न व्ययात्मा
भूतानामीश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्यात्ममायया
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्यात्ममायया यदा ज्ञानेर्भवति भारत यदा धर्मस्य ज्ञानेर्भवति भारत
आभ्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
आभ्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूना
विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूना
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो व्यथितात्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं
यो व्यथितात्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुनः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः
वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोध
मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागता
बहवो तपसा पूत मद्भावमागत
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
कृष्णं
वंदे जगद्गुरुं
श्रीराम
जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम
श्री राम जय राम जय राम
शोक कैसे मिटे ये प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग में कई बातें बताई। आगे बोलते हैं कि गीता जी का उपदेश शोक न करने के लिए ही हुआ है। पहला ही पहला श्लोक है उपदेश का कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए शोक कर रहे हो और बातें तुम पंडितों से करते हो लेकिन पंडित हो नहीं। गतासून अगतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक कर रहे हो और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी। तो पंडित लोग ज्ञानी लोग किसी के लिए भी शोक नहीं किया करते हैं। हमको कोई ज्ञान कितना हुआ इसकी पहचान है कि हमारी शोक की मात्रा कितनी है। कोई कहे कि हमको तो बहुत ज्ञान हो गया, सत्संग में जाते हैं हमको बहुत बात समझ में आ गई, परंतु ये देखना चाहिए कि तुम्हारा शोक कितना कम हुआ। यहां आकर के अब तक अर्जुन फेल हो गए, क्योंकि अर्जुन ने कहा है कि यच्छोक मुच्छो शनम इंद्रियाणा, मुझे इतना शोक हो रहा है कि ये इंद्रियों को सुखा देगा ये शोक। तो जो मर गए उनके लिए क्या शोक करना, मर गए मर गए, अब उनके लिए शोक करने की कहां जगह है। वे वापस लौट कर तो आने के लिए नहीं है, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। उनके साथ अब हमारा संबंध टूट गया। मरने पर जो दुख होता है वो मरने का नहीं है। उस आदमी के साथ हमने इतना गहरा संबंध मान लिया कि हमारा कभी ये संबंध टूटेगा ये विचार ही नहीं किया। इस कारण से अकस्मात संबंध टूटते ही शोक पैदा होता है, तो वो हमारी गलती का परिणाम है। वो मरने का शोक नहीं है, हमारी गलती का परिणाम है। तो ऐसे समय में हमको यही सोचना चाहिए कि बस अब हमारा संबंध खत्म हो गया, इतने दिन का ही हमारा लेन देन था सब छूट गया, हमारा हिसाब था वो टेढ़ा हो गया। अच्छी बात है, वे अपने रास्ते चले गए, हम हमारे रास्ते से चले जाएंगे, परंतु शोक करना कहां तक उचित है। ये याद रखो कि ये ही संस्पर्श सा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। इंद्रियों के जितने भोग है और उनसे जो हम सुख लेते हैं वे दुख बने, वे दुख के हेतु है। दूसरे शब्दों में आप ये मानो कि जितने सुखदायी भोग है वो दुखी है। जैसे खुजली आती है तो खुजली करते समय में अच्छा लगता है, सुख होता है, परंतु वो बीमारी है। इसी प्रकार से संसार के जो सुख भोगों की रुचि है ये बीमारी है। ये भोग तो आदि और अंत वाले हैं, परंतु ये दुख होगा इनसे, ये हमारे मरने के साथ जाएगा। इसलिए ज्ञानी महापुरुष संसार के भोगों में अटकते नहीं है। संसार के किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में न तो प्रेम करना चाहिए न उसका संग करना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति वस्तु हमसे दूर हो जाए तो न रोना चाहिए। और कोई नई चीज पैदा हो जाए तो उसके लिए हर्ष भी नहीं मनाना चाहिए। संसार के सुख में सुखी होते हैं तभी दुख उठाना पड़ता है, नहीं तो दुख नहीं उठा सकता। ये आपको सार बात बता रहे हैं। मनुष्य को अपनी आत्मा पर विचार करना चाहिए, जो कभी मरता नहीं है, और जो प्राणी मर गया उस पर विचार करता है। कितने आश्चर्य की बात है। अरे विचार करो तो अपनी आत्मा की नित्यता पर विचार करो। मर गया अब उसके लिए क्यों शोक करते हो। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये न जन्म लेता है न मरता है न अज है न ये अज है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। कितनी विशेषता भरी पड़ी है आत्मा में। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता, ये कितनी गजब की बात है।
गजब की।
इधर विचार ही नहीं करते। शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि शरीर अजर अमर होता और वो मर जाता तब शोक करते तो कोई अच्छे भी लगते कि देखो था तो अजर अमर और ये मर कैसे गया। ध्यान में आई ना। यदि शरीर अजर अमर होता और वो यदि मर जाए तब तो शोक करे कि भाई ये अजर अमर था, ये मर कैसे गया। तब तो शोक करना कोई बात भी समझ में आती। परंतु शरीर का काम मरना ही है, ये प्रतिक्षण मरता है, फिर इसके शोक की जरूरत क्या है। आत्मा के लिए कोई शोक नहीं करते क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। कैसी उलझन पैदा हो रही है। आत्मा की विशेषता पर तो, अजर अमरता पर तो कोई विचार ही नहीं, और शरीर के मरने पर शोक पैदा हो रहा है। अरे आत्मा की नित्यता को समझकर प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है। आपके सामने तो दोनों चीज है, एक नष्ट होने वाली एक नष्ट न होने वाली। तो आप नष्ट होने वाली को पकड़कर जैसे शोक करते हो, ऐसे नष्ट न होने वाली आत्मा पर विचार कर आपको खूब प्रसन्न रहना चाहिए। शरीर तो रहने की चीज है ही नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जितने भूत प्राणी आदि पहले निराकार थे, शरीरधारी नहीं थे, और आगे भी ये निराकार रहेंगे। बीच में थोड़े समय के लिए शरीर वाले बन गए। ये थोड़े समय में रहने वाले का इतना आदर। समुद्र के ऊपर झाग होते हैं, झाग को इतना महत्व देते हो समुद्र को नहीं। अरे समुद्र पर झाग है, ये तो झाग है, झाग है। अरे झाग में न पानी है न जाग में कोई काम बनता है, और कितना विशाल समुद्र है, कितना इसमें पानी, इसकी कोई महत्ता ही नहीं। ऐसे ही बीच में थोड़े देर के लिए प्रतीत होने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कितना महत्व दे रहे हैं। ये तो मरेगा, जैसे झाग है वो फूटता है, कोई रोता नहीं है, ऐसे शरीर तो संसार रूपी समुद्र का एक झाग है, इसके फूटने पर क्यों रो? रात्रि में स्वप्न में किसी को राज्य मिल गया जो पहले था ही नहीं, और जग गए तो उस राज्य नहीं रहा, तो क्या उसके लिए शोक करता है कोई? जगने पर वो तमाशा सा देखता, अरे मुझे रात को सपना आया, मेरे को राज्य मिला हो गए। यदि शोक करो तो वहां शोक करना चाहिए कि मेरे को कितना बड़ा राज्य मिला था, और अब देखो राज्य मेरे हाथ से छिन गया। वो आदमी यदि शोक करने लगे तो दुनिया वाले सब कहेंगे कि कैसा मूर्ख है, स्वप्न का राज्य नहीं मिला उसके लिए शोक करता है। अरे तेरे पास था क्या जो चला गया? ऐसे ही ज्ञानी महात्मा हम लोगों के शरीरों के नष्ट होने पर विचार करते हैं, क्यों शोक करते हैं, जो शरीर इनको मिला ही नहीं। इसलिए शरीर को लेकर कभी शोक नहीं करना चाहिए। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था आती है, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है, इसी प्रकार से शरीर आगे मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया, तो ये मृत्यु अवस्था केवल शरीर तक है, आप तक थोड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने में मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ देता है, नया शरीर लेता है, उसमें शोक की क्या बात है? आपका कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया तो बड़े आराम से इसको फेंक करके दूसरा कपड़ा ले लेते हो, उस नया कपड़ा पहनने में आपको आनंद आता है कि आप नया कपड़ा पहन लिया, दूसरों को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब शरीर रूप कपड़ा बदलते हो दूसरों को बुरा लगता है, अपने को भी बुरा लगता है, ये बात उचित नहीं है। न तो आत्मा की दृष्टि से शोक करो, न शरीर की दृष्टि से शोक करो। हम आपको रामायण के अनुसार समझाते हैं, बाली के छाती में भगवान ने बाण मारा, बाली मर गया, विलाप करती हुई उसकी स्त्री तारा आई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो भगवान राम उसके पास आए और उसकी स्त्री से कहने लगे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तव आगे देखा आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। ए तारे, ये आकाश, ये वायु, ये तेज, ये जल और पृथ्वी, पांच भूतों का ये शरीर है, ये अधम है, नीचा है। किससे नीचा है? आत्मा की दृष्टि से नीचा है। ये तो देखो यहां पड़ा है, तुम किसके लिए शोक करती हो ये तो बताओ। कौन मर गया, मरा कौन, दे विचार तो करो। आत्मा तो कभी मरता नहीं और शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम रोती किसके लिए हो यही पता नहीं है। आदमी शोक करता है उस आदमी से कोई ईमानदारी से पूछे कि तुम किसके लिए शोक करते हो, तो उसके पास कोई शब्द नहीं है कि किसके लिए शोक करते हैं। जो आदमी मर गया, अरे शरीर तो सामने पड़ा है ना, कि शरीर नहीं आत्मा के लिए, तो आत्मा तो भाई कभी मरती नहीं है, किसके लिए रोती है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो तारा को ज्ञान हो गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। भगवान से ज्ञान मिला तो चरणों में गिर गई और भगवान से कहने लगी कि आप मुझे परम भक्ति प्रदान करो। कितनी विचित्र बात है। उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया क्योंकि उसको उपदेश भगवान ने दिया था। भगवान की परम भक्ति उसको मिल गई, तब उसका रोना बेकार हो गया, अब रोना उसने छोड़ दिया। ऐसे इस बात को समझ करके हर एक माता बहन को, ये जिनका की पति मर गया हो, इस उपदेश को याद करना चाहिए और इस दृश्य को अपने हृदय में उतारना चाहिए कि ऐसे तो बाली मरा पड़ा है, उसके पास भगवान खड़े हैं और उसके पास में, उनके पास में हाथ जोड़े हुए तारा है, विलाप करती है और भगवान समझाते हैं। जिनका पति मर गया हो उनको इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यह भगवान का दिया हुआ तारा के निमित्त उपदेश है, वो हमारे लिए है, ऐसा समझना चाहिए। और जो ही आंख बंद करे और ये तारा वाला दृश्य याद आए, तो उस समय भगवान के चरणों में ध्यान से प्रणाम करते हुए उनसे परम भक्ति का वरदान मांगे। माताओं बहनों में त्याग की एक बड़ी शक्ति होती है। वे अपनी अपेक्षा अपने पति को ज्यादा सुखी देखना चाहती हैं। ऐसी माताओं के मन में यदि ये विचार आता हो कि क्या करें, हमारे पति ने तो कोई भजन किया ही नहीं, कैसे कल्याण होगा, वो तो मर गए, तो वे भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे पति ने आपको याद नहीं किया, वो तो अब समय निकल गया, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। ऐसे अपने पति का भी ध्यान करके भगवान के चरणों में पति को देखना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि महाराज इनको परम भक्ति देना, इनको अपने स्थान पर रखना, इनको हमारे आप अपने पास में रखना, ऐसे भगवान से कहना चाहिए। ऐसी माताओं बहनों की प्रार्थना जब भगवान सुनते हैं तो भगवान को खूब आनंद का अनुभव होता है। पर क्या करें, हमारी माताएं बहनें तो मरने पर बहुत शोक करती है क्योंकि उनको इस बात का डर लगता है यदि हम रोएंगे नहीं तो हमको दुनिया और समाज क्या कहेगा कि देखो ये तो रोई नहीं। आप लोगों को तो दुनिया की और समाज की पड़ी है लेकिन भगवान के विधान में आप रो रही हो, इस बात से आपको जो नुकसान होगा वो समाज की जड़ी कटी बातों से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो मूर्खता से बोलते हैं समाज के लोग और दूसरे संसार के दुनिया के लोग मूर्खता से बोलते हैं कि देखो ये रोती नहीं है, पति मर गया है विधवा भी रोती नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है इसके मन में। इस दंभ की अपेक्षा, माने लोगों को अच्छा बताने की अपेक्षा, शांत रहकर पति को भगवान के चरणों में देख करके नामस्मरण करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि भगवान ने अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं समझी तब बदला है, कपड़ा पुराना हो गया तो बदल देते हैं, हमारा कपड़ा हम खुद ही बदल देते हैं, पर कभी कोई हमारा परम हितेशी हो और वो लाकर कहे कि देखो जी ये आपका चोला फट गया, पुराना हो गया, हटाओ, ये देखो नया चोला पहनो, तो मन में कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो ये हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए नया चोला लेकर आए हैं, ये हमारे कितने प्रेमी हैं। ऐसे अपना चोला बदलने का मौका आए तो कहा हा भगवान कितने हमारे प्रेमी हैं कि इस चोले को बदल करके दूसरा चोला लिए हुए हैं। इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, बैरागी की दृष्टि रखो, ये पहले से ही बैराग्य बनाओ। देखो जितना बड़ा कुटुंब होगा उतनी उसमें आसक्ति ज्यादा होगी और जब ध्यान में कमी रहेगी, चित्त में वैराग्य हो जाता है तब ये कुटुंबी और ये पदार्थ स्वाभाविक ही अच्छे नहीं लगते। उसके पास यदि संसार का धन आता है, मान बढ़ता है, अनुकूलता आती है तो वो सब देख करके घबराने लगता है। वैराग्य की जितनी ज्यादा प्रबल ज्वाला जगेगी उतने ही आपको शांति ज्यादा मिलेगी। ज्वाला लगने से कोई शांति मिलती है? वैराग्य की ज्वाला जगती उसको उतनी शांति मिलती है। वैराग्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास रुपया पैसा कुटुंब और मान आदर सत्कार ये अच्छा नहीं है, इससे हमारा पतन है। आज इतना शोक होता है उसका कारण क्या है कि वैराग्य की कमी है। किसी भी दृष्टि से चला जाओ, शोक करना तो कहीं पर भी उचित नहीं है। भक्ति की दृष्टि से ख्याल करके देखो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की चीज है, भगवान ने भेजी है तो भगवान के पास चली गई, हम उसमें अड़ंगा लगाने वाले कौन? जब भगवान की चीज है और उन्होंने मंगा ली तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात हुई ना। समझो कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक करना जरूरी, शोक करने की जरूरत नहीं। जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। क्या कि ये बने रहे, ये हमारा संयोग बना रहे, ऐसा भी चाहना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जाने में रहने में भगवान किस बात में ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उसी में ही अपने को आनंद मनाना चाहिए। इतने दिन तक भगवान ने इनको जीवित रखा, उसमें भगवान को आनंद आ रहा था तो हम भी आनंदित हो गए। अब भगवान ने इनको हमारे बीच में से हटा लिया और वे आनंदित हो रहे तो अपने भी आनंदित रहो। हमारा काम तो सबको भगवान का रूप समझकर सेवा करना था, कर दी। जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान की लीला है और जो होना होता है वही होता है, उसमें कोई हेर फेर नहीं चलती है। ये चिंता शोक और भय करके तो हम अपने आप को पतन की तरफ ले जाते हैं। इस बात पर भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद के ऊपर एक से बढ़कर एक विपत्ति आई, खूब अत्याचार हुए, लेकिन प्रहलाद के मन में प्रसन्नता ही बढ़ी। प्रहलाद ये जानते थे कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान का विधान है इसलिए हो रहा है, और भगवान स्वयं मंगलकारी है तो उनका विधान बहुत बड़ा मंगल करने वाला है। आता है ये तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है। प्रहलाद को आग में बैठा दिया, आग ठंडी हो गई और वो आनंद में ही डूबा रहा। एक बात आपको रहस्य की बताते हैं, प्रहलाद ने कभी नहीं कहा भगवान से कि हमारे ऊपर देखो अत्याचार हो रहा है, ये हमें बहुत कष्ट दे रहा है, हे प्रभु हे परमात्मन इस कष्ट को मिटाओ ना, ये कितनी यातना दे रहे, इस कष्ट को दूर करो, मैं आपका भक्त हूं और आपकी भक्ति करने से ही तो मुझे कष्ट दे रहा है, और आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो दूसरी कौन सहायता करेगा, ऐसी बात प्रहलाद जी ने कहीं नहीं कही। यह तो हम लोगों की कमजोरी है, बेसमझी है कि भगवान के विधान को भगवान से मिटवाना चाहते हैं कि ये परिस्थिति क्यों भेज दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो हमारी समझ है ये भगवान की महिमा को कम करने के लिए हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे, इससे हम भगवान का निरादर कर रहे हैं। होना तो वही चाहिए जो भगवान आप चाहते हो। प्रहलाद को कितना समय लगा, थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव को कितना समय लगा, 5.5 महीने लगे। असुर लोग तकलीफ देते रहे लेकिन कोई किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। सब पर आफत आती है, सब पर आफत आती है, परंतु जो विज्ञ होते हैं, भक्त होते हैं, वो आफत को पार कर जाते हैं और भगवान को याद करते हैं, उनको वो आफत दिखती नहीं है। ऐसे हमें भी ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे सामने कोई आफत आ ही नहीं सकती है, हमारे सामने भगवान का विधान आता है, भगवान हमारी जगह जगह पर परीक्षा ले रहे हैं, हमको फैल नहीं होना है। दुख के ऊपर दुख, आपत्ति पर आपत्ति, कष्ट के ऊपर कष्ट, ये एक साथ आते रहते हैं, तो मन में खुश होना चाहिए कि आहा अब हमारे पाप बहुत जल्दी नष्ट हो रहे हैं और अब अगला ही क्षण भगवान से मिलने का है। ध्यान से सुन जाओ, आफत पर आफत आवे जरा समझ लो कि लारे भगवान है। जैसे प्रहलाद जी ने आफत पर आफत सही तो बाद में भगवान के दर्शन हुए, ध्रुव जी महाराज ने भी कठोर तपस्या की बाद में भगवान मिले। आपने आपत्ति की तरफ तो देख लिया किंतु उसके फल की तरफ विचार ही नहीं किया, तो आपको फल की तरफ ख्याल करना चाहिए। 5.5 महीने ध्रुव ने बड़ी तकलीफ पाई, बाद में ध्रुव को भगवान विष्णु साक्षात मिले, प्रहलाद ने भी तकलीफ पाई किंतु छोटी अवस्था में ही भगवान मिल गए। इस प्रकार कैसी भी विपत्ति आ जाए उसे भगवान का वरदान समझना चाहिए और मन ही मन में खूब हंसते रहना चाहिए। एक बात और आपको रहस्य की बताते हैं, कोई भी काम हो, जो भी परिस्थिति हो, उसमें सहमत हो जाइए कि हाँ यही हम चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सहमत हो जाओ, हाँ ये चाहते थे हम, यही चाहते थे, घाटा लगा घाटा ही चाहते थे हम, क्यों चाहते थे घाटा हुआ है ना, हम क्यों जाए, भगवान ने किया है और भगवान ने ठीक किया है, भगवान की इच्छा हुई है तो हमारी तो भगवान की इच्छा में इच्छा है, घाटा हो जाए न पाओ। भगवान की खुशी में ही अपनी खुशी है, अपनी कोई निजी अलग से भगवान की इच्छा को छोड़कर हमारी इच्छा नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। ऐसी भावना आ जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए, उसका भाग खुल गया, उसकी तो लॉटरी खुल गई। इस तरह अपना जीवन बिताने से बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के भेजे हुए दुख में सुख बुद्धि करो, भोगों में क्यों सुख बुद्धि करो, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। भगवान के भेजे हुए दुख में सुख बुद्धि करो, भोगों में सुख बुद्धि क्यों करते हो। जैसे माँ है वो लड़के को मारती है तो उस मार में क्या अमृत भरा है, कितना अमृत भरा है, सुख भरा है, आनंद भरा है, लड़के का हित भरा हुआ है, पर वो हित दिखता नहीं है, दिखती तो मार ही है, दिखती तो मार ही है पर हित नहीं दिखता, अमृत नहीं दिखता, आनंद नहीं दिखता। उस मार में जो हित है वो तो, उस मार में जो हित होता है वो थोड़ा सा ही हित है, अल्प है, पर भगवान की मार में जो हित होता है वो बड़ा भारी होता है। वह बड़ी मां है जिसका हृदय लाखों करोड़ों माताओं से भी बढ़कर है, भगवान रूपी बड़ी मां। हमको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हमको मार रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो इसमें बड़ा भारी हित हो रहा है। फिर दोबारा सुनो, भगवान तो बड़ी मां है, उसका हृदय लाखों करोड़ों माताओं से भी बढ़कर है। हमको विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमको मार रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसमें हमारा बड़ा भारी हित छिपा हुआ है। हमारी समझ में भी नहीं आए हैं तो ये बात हमको मान लेनी चाहिए, या तो समझ लो या मान लो। गुरु जो मारता है उसमें भी हित होता है, किंतु भगवान जितना नहीं होता, ऐसा समझकर हमको हंसते रहना चाहिए। कोई भी काम हो उसको भगवान की लीला समझो। वास्तव में भगवान के स्वरूप का अनुभव हमको नहीं हो रहा है तब भगवान अपना स्वरूप दिखाने के लिए नई नई लीला कर रहे हैं। वस्तु मात्र में भगवान के स्वरूप का अनुभव करो। चेष्टा मात्र जो हो रही है अपने आप हो रही है, अनिच्छा से हो रही है, परिच्छा से हो रही है, ये सब भगवान की सेवा है। जो अनिच्छा से हो रहा है उसको भगवान खुद कर रहे हैं, और जो परिच्छा से हो रहा है उसको भगवान करवा रहे हैं। जैसे कोई हमारा नुकसान करता है तो मन में सोचना चाहिए कि ये भगवान है, ये हमारा नुकसान करवाना है, और अकस्मात कोई घटना घट जाए, परीक्षा से लगती है वो, परंतु परीक्षा से होते हुए भी ये भगवान का ही कार्य है, भगवान ही करवा रहे हैं। इसमें भगवान का हाथ है ऐसा समझ करके खुश रहना चाहिए। जैसे CID अफसर किसी अपराध को लेकर वो ढूंढता है कि इसमें किसका हाथ है, तो बहुत गहराई से देखने पर पकड़ लेता है। इसी प्रकार से हमको खुश रहना चाहिए, भगवान का हाथ ऐसा समझकर खुश होना चाहिए कि भगवान हमारे परम मित्र है, परम स्नेही है, परम मालिक है। फिर ये दुख क्यों आए? दुख आता है हमारी बेसमझी से, मूर्खता से, तो शास्त्रों और महात्माओं पर विश्वास करके भगवान की लीला में हर समय में खुश रहने का अब विचार रखना चाहिए। हर समय खुश रहें।